हम सभी भाग्यशाली आत्माएं इस तपस्या भूमि में, मधुबन की भूमि में तपस्या करने के लिए आए भाग्यशाली हैं। क्या सोचते हैं, सभी हैं भाग्यशाली? भाग्यवान आत्माओं को ही ऐसा मौका मिलता है। विचार करो, बाबा के अनेकानेक बच्चे आज यज्ञ के भाई बहनों की संख्या पूछेंगे तो कितनी बताते हैं? 10 लाख। उनमें से पांडव भवन में मधुबन इस अब्बा की भूमि में कितने लोग तपस्या के लिए आते हैं, कितनों को मौका मिलता है? कोटों में कोई, और कोई में भी कोई। अपने अपने सेवा स्थानों पर नजर दौड़ाओ, कितने भाई बहन हैं और कितनों को मौका मिला है। पूरे यज्ञ की बात छोड़ो, लेकिन हम जिस जिस सेवा स्थान से जुड़े हैं, कितने भाई बहनों को मौका मिला है? थोड़े से ना, लकी हुए ना, तो हम कितने बाबा के लकी लवली बच्चे हैं। ये बाबा का प्यार हमें यहां खींच कर लाया है। तो यहां हम जो भट्टी करने के लिए आए हैं, हम सबका भी फर्ज है कि सचमुच जिस आनंद, जिस रस को जीवन में भरने के लिए आए, वो रस हम समा करके जाएं। मधुबन में आना माना वो तपस्या जो ब्रह्मा बाप ने की है, उन वाइब्रेशंस को कैच करना, अपने में समाना। जो ब्रह्मा बाप ने की है, जो हमारे आदि रत्नों ने की है, दादियों ने तपस्या की है, ये वो तपोभूमि है। इस तपोभूमि से हम अपने अंदर में भी वो तपस्या की शक्ति, अपने अंदर में बल सदा के लिए, अपने अंदर में गुणों को समाने के लिए आए हैं। 4 दिन के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि यहां जो 4 दिन रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 4 दिन ऐसे दिन बन जाएं जो सदा सदा के लिए हमारा जीवन भरपूर हो जाए। ठीक लगती है बात? या केवल 4 दिन? क्या विचार है? सदा का ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन कोई 2-4 घंटे और 2-4 दिन की नहीं है। ब्राह्मण जीवन और भट्टी का लक्ष्य दोनों आपस में सामंजस्य रखते हैं। ब्राह्मण जीवन का भी उद्देश्य है कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं। और उसके लिए अभ्यास बाबा ने सिखाया है अशरीर स्थिति का। और बट्टी का उद्देश्य क्या है कहेंगे ना, इसमें भी हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास, योग का अनुभव, गहराई का अनुभव करना है। तो ये स्थिति बनी रहे तो इन तीन चार दिनों में विशेष अनुभव करने के लिए चार बातों का ध्यान हम रखेंगे। पहली बात, जब भी भट्टी में आते हैं तो कहा जाता है मौन रखना है, कहते हैं ना। तो मौन तो मुख का रखेंगे ही, उससे अधिक ध्यान रखेंगे मन भी मौन में रहे। मुख को तो मौन में ही रखना है, लेकिन मेरा अंतर जगत, उसमें भी शांति। योग की स्थिति उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है, पहले मन वो शांत रहे। मन शांत होगा तभी तो बाबा की शक्तियों को ले सकेगा। मन ही भटकता होगा तो कैसे लेंगे। इसलिए कह सकते हैं दो बातें योगी जीवन के लिए जरूरी है, योग की अनुभूति के लिए दो बातें या दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक है समेटने की शक्ति, दूसरा है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। समेटना क्या है? बाहर की हर बातों से मन को समेटो। जो भी कारोबार, अनेकानेक बातें बुद्धि में चल रही है, अब तक की इजाजत है, लेकिन अब जब भट्टी शुरू हो जाएगी उसके बाद बाहर का कारोबार बुद्धि का बंद। समेटना है ना, ये अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं भट्टी हम यहां कर रहे हैं, बुद्धि हमारी इंदौर में है, नहीं, बुद्धि बाबा में लगी हुई है। तो बाहर से बुद्धि को समेटना, दुनिया को उदाहरण देते हैं, कोर्स कराती हैं बहनें, उदाहरण देती हैं कि कछुआ जब चाहता है अपने अंगों को समेटता है। योगी की पहचान है, अभी हमें मन बुद्धि बाबा में लगाना है, तो बुद्धि बाहर से सिमटी हुई हो ये अभ्यास। साकार में बाबा थे, हमारी बड़ी दीदी होती थी, कहा करती थी, कई बार मुरली में भी, साकार मुरली में आता है, भट्टी माना क्या, 7 दिन की भट्टी में बैठो, बीच में बाहर का संकल्प भी आया तो पुनः भट्टी शुरू। ऐसा अभ्यास बाबा शुरू में बहनों को कराते थे। अगर बुद्धि बार गई तो खत्म हो गया ना। 7 दिन करनी है, पर अगर एक बार भी बुद्धि बाहर गई तो 7 दिन नहीं रही ना बाबा में, भटक गई ना। तो भटकनी नहीं चाहिए, वहीं से शुरू। तो हमें भी ये 4 दिन इस अभ्यास में रहना है कि मेरा मन और बुद्धि ये तार बाबा में लगी रहे, जुटी रहे। भटके नहीं, अभी बीच बीच में भटकने का अभ्यास हो गया है। बैठते हैं योग में, कभी कारोबार याद आ जाता है, कभी कोई बातें याद आती हैं, कभी पास्ट याद आता है, कभी घटनाएं याद आती हैं, तो भटक गई ना। लेकिन अब ज्ञान के सार में बुद्धि को 4 दिन लगाना है, जो दूसरी शक्ति कही, विस्तार को सार में लाना। तो ज्ञान का सार क्या है, हमारी इस पढ़ाई का सार कौन सा है, ये पढ़ाई है ना, ब्राह्मण जीवन की पढ़ाई, पढ़ाई का सार बाबा 2 शब्दों में सुनाते हैं, आना और जाना। जाना है अपने घर कर्मातीत बनकर, कर्म बंधनों से मुक्त होकर, फिर आना है नई दुनिया में पुनः पाठ बजाने के लिए। तो जाएंगे कब, जाना है ये पता है, जाना है ना, बाबा के पास जाना है। जाएंगे कब, जब ये देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास हो। जिसको बाबा कई बार कहते, पहला पाठ पक्का हो, मैं आत्मा हूं, बिंदु रूप हूं, ज्योति बिंदु, मेरा बाबा भी कैसा है, बिंदु है। कैसा है बाबा, ज्योति बिंदु है। हम सब आत्माएं भी बिंदु रूप है ना। तो बिंदु का ही महत्व बाबा ने समझाया है। बाबा कई बार कहते, अगर एक के आगे बिंदु लगाते जाओ वैल्यू बढ़ती जाती है। एक के आगे बिंदु लगाया 10, 10 के आगे बिंदु लगाया 100, 100 के आगे बिंदु लगाया 1000। तो एक बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, फिर बिंदु लगाओ ये सब आत्माएं भी कौन है, बिंदु। यही हमारा लक्ष्य। तो इन 3-4 दिनों में क्या अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा बिंदु, यही पहला पाठ है ना, बिंदु रूप, मैं आत्मा हूं बिंदु। क्योंकि ज्ञान अंदर में तो है, अब चाहिए अनुभव में। अभी ज्ञान सुनाने के लिए कहेंगे ना, आप सब सुनाने में कहेंगे, मैं भी सुना सकता हूँ, मैं भी सुना सकती हूँ, मैं भी सुना सकती हूँ ये बात। लेकिन बात है मुख्य, मेरा जीवन बोले वही करना है, बोले, मुझे नहीं बोलना है। तो मधुबन में आना माना अपने जीवन को इतना भरपूर करना। तो ये तीन चार दिन ऐसा मन का मौन हो, ऐसा मुख का मौन हो, जो चलते फिरते सब मधुबन निवासियों को भी लगे कि ये तो जो ग्रुप आया है ये शांति दूत आत्माओं का ग्रुप है, उनको भी लगना चाहिए। ऐसे नहीं वो लगे उनको कि ये जो ग्रुप आया ना इनमें योग की लगन ही नहीं है, ये भट्टी के लिए तो आए हैं लेकिन देखो कितना बोलते हैं, ऐसा ना लगे। उनको भी दिखाई दे सचमुच ये आत्माएं योगी तो आत्माएं। मुझे याद आता है पहले जब भट्टी हुआ करती थी, हम छोटे थे और यहाँ पांडव भवन में भट्टी हुआ करती थी, भट्टी से उठते थे सबके चेहरे एकदम लाल लाल हुए हुए होते थे, शक्लें बदल जाती थी। दो घंटे डेढ़ घंटे योग के बाद जब उठती थी बहनें भाई, उनके चेहरे पर एक अलौकिक नूर होता था, एक अलौकिक रंगत होती थी, जिसको बाबा की भाषा में कह सकते रूहानियत दिखाई देती थी, दिखाई देती थी। बुरा नहीं मानना, अभी जो हम योग करते हैं कभी सो जाते हैं, कभी सोचने थक गए, कभी लगता है अरे इतनी सिटिंग हो गई, कोई भाई बहन आके कहते हैं सिर भारी हो गया, अब इसको आप योग कहेंगे? कहेंगे नहीं। प्राप्ति में न थकावट आती है न नींद होती है, न उदासी आती है कि अरे बहुत सिटिंग हो गई, नहीं। आजकल तो सब भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए कितनी सुविधा यज्ञ देता, सबके लिए बैठने के लिए कोच है ना? और बाबा को बैठा हुआ देखो, बाबा की बैठक देखो, घंटों बाबा इसी बैठक में तपस्या करते थे। मैं समझती हूँ इस ग्रुप में कोई भी ऐसा 90 साल का नहीं होगा, इस उम्र में, अभी तो 40 साल की उम्र में भी आधा घंटा नीचे नहीं बैठ पाते, है अंतर? है ना अंतर? और बाबा कहा करते थे हमारी बैठक ऐसी होनी चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि सब नीचे बैठो या जबरदस्ती बैठो, लेकिन स्थिरता तो आए, ऐसे नहीं हलचल में लगे रहो, थकावट की अनुभूति हो, आराम से बैठने को मिला है तो बस सिर भी यूं ऊपर जाता जाता है, जाता जाता है, नहीं। मन बुद्धि को ऊपर ले जाना है, सिर को नहीं। तो इसलिए हमारा ये भट्टी का लक्ष्य ही यही है, मन का मौन हो, मन भी चित भी शांत स्थिर, मैं भी स्थिर। भले बीच बीच में हमारे को क्लासेस भी मिलेंगी, बहुत सी क्लासेस मिलेंगी आत्मा को भरपूर करने के लिए, पर वो जो क्लासेस मिलेंगी सिर्फ सुनकर खुश नहीं हो जाना है, सुनकर उसको अंदर में समाना है, ये बाबा की शिक्षाएं हैं। ये हमारा ज्ञानी योगी रूप है। इस तरह से शिक्षाओं को अंदर में समाना है। मात्र सुनकर खुश नहीं होना कि इस भाई ने इस बहन ने क्लासेस बहुत अच्छी कराई, लेकिन जो क्लासेस बाबा ने हमारे लिए किसी भाई या बहन को निमित्त बना के कराया, मुझे उसको अभी से धारण करना है। तो योग की गहराई भी और मिलेगी। ऑटोमेटिक लक्ष्य हो गया ना धारणा करने का। जब धारणा का लक्ष्य हो जाएगा तो योग स्वाभाविक लग जाएगा, ऑटोमेटिक। दूसरी बात, मन मुख के मौन के साथ साथ बाबा के घर में हम सब बच्चों के लिए ब्रह्मा भोजन तो है ही है ना। देखो कितने अच्छे हैं हमारे मधुबन निवासी भाई बहने, कितनी सेवा में तैयार रहते हैं। आप उठेंगे भोजन तैयार, मुरली से उठेंगे कहेंगे जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार। ना कोई चिंता देते, ना कोई आपको फिकर देते, कहते हैं बस आप बच्ची करो, आपके लिए सब तैयार है। कितना सहयोग है। परंतु भोजन आप सबके लिए है, लेकिन ऐसा न खाना जो शरीर अस्वस्थ हो जाए और भट्टी से रह जाए। ऐसे नहीं कि हाँ ये भी है ये भी है मैं सब खाती रहूं। पिछले साल का अनुभव सुनाऊं आपको। एक बहन आई, बोली बहन जी दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा क्या हुआ बहन, बोली आई तो भट्टी करने हूं, बहुत मन था मेरा भट्टी करने का, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आई हूं, यहां आके तबीयत साथ नहीं दे रही है। क्या हुआ बिन जी, पेट खराब हो गया है। जैसी बात हुई ऐसे ही सुना रहे हैं आपको। मैंने कहा दवाई ली आपने, लाहा ना खाया क्या था ऐसा, बोला सोचा खाना नहीं खाती हूँ, योग करना है ना तो भोजन नहीं करती हूँ, बस 4-5 ग्लास दूध का पिया है। क्या होगा फिर बताओ, अभी क्या कहती मैं उसको, बाबा के घर में सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है, परंतु अपने तन को स्वस्थ रखना आपका काम है। जो सूट करता है उतना ही खाओ। अपने भोजन का, अपने आप खान पान का ध्यान रखो। क्या सूट करता है क्या नहीं करता है? क्योंकि अगर बीमार पड़ गए, वही माता की बात, फायदा लेने आई थी, फायदा हुआ तो कहीं मैं भी उस गिनती में ना आऊं। मुझे जो जरूरत है, बाबा का भोजन है, स्वीकार किया बाबा की याद में, बस। ऐसे नहीं कि ठीक है बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, सूट नहीं करता, कोई बात नहीं, बाबा का भंडारा है तो चलो। नहीं। योगी जीवन है, योग का अर्थ या योगी का अर्थ ही है जो संतुलित है, व्यवस्थित है। तन मन दोनों का संतुलन चाहिए। तो अपना ध्यान आपे ही रखें, ठीक है ये बात? ठीक है। तीसरी बात, इन दिनों में जैसे अभी बताया खान पान का ध्यान रखो, ऐसे ही मन के भोजन का भी ध्यान रखना। मन का भोजन, हम यहां आए हैं बुद्धि की तार बाबा से जोड़ने, किसी भी प्रकार का। इतने सब हम आपस में मिलते हैं तो न अवगुण देखने हैं, न उसकी चर्चा करनी है। हम तो औरों का भी भला करने के निमित्त आत्माएं हैं। बाबा हमें जिम्मेवारी देता बच्चे विश्व कल्याणकारी हो, विश्व को शुभ भावनाएं देनी है, विश्व के लिए हमारा मनसा सेवा पर अटेंशन हो। तो हम आपस में अगर मिलते हैं, अगर एक दो को अवगुण एक दूसरे के देखते रहे तो बुद्धि कहां बिजी हो गई? ग्रहण करने में अवगुण। आए थे हम हंस बनने के लिए, मोती चुगने के लिए, हमारा ट्रैक बदल गया। बाबा ने हमें एक बात सिखाई है बच्चे, गुण विशेषता हरेक का देखना सीखना ये ब्राह्मण की विशेषता है, लेकिन अवगुण हरेक की पर्सनल प्रॉपर्टी है। मुझे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्यों देखना है? गुण सबकी है, विशेषताएं तो भगवान प्रभु की देन है। हर आत्मा में विशेषता है, बाबा के बने हैं, बाबा ने कहा हुआ है, बाबा का हर ब्राह्मण बच्चा उसमें विशेषता, तब तो बाबा का बना, तब तो भगवान की सिलेक्शन में आया। तो मुझे हरेक की विशेषता को तो देखना है, लेकिन यहां आकर भी अगर मैंने अवगुण ग्राही दृष्टि रखी, अरे वहां क्या हुआ बताऊं क्या? अरे क्या बताएं, इसका मतलब गए नहीं थे, पाया ही नहीं कुछ, खाली हाथ लौट के आए। तो बच्ची में इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति किसी के भी अवगुणों पर ना जाए। ऐसा नहीं कहना कि बहन जी ने दीदी ने मुख का मौन तो का है, आपस में बोलना नहीं है, इशारों से एक दूसरे को दिखाते रहो। नहीं, मुझे बाबा को देखना है। एक दूसरे को हम आगे बढ़ाने के लिए उसको आगे बताएं कि ये सही करो, लेकिन अवगुण देखें। और मेरी बुद्धि मन चित उसमें गंदा हो जाए तो जब योग में आकर बैठेंगे तो क्या होगा? फिर योग लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि चित्त तो मैला हो गया। आए ही है भट्टी में पहले जो मैलापन चढ़ा हुआ है उसको उतारने के लिए, ना कि चढ़ाने के लिए। कपड़ा धोने बैठे कोई, सरफ में डालने की बजाय मिट्टी में लपेटना शुरू कर दे तो क्या कहेंगे? साफ हो जाएगा? तो हम पहले का जो मैल आत्मा पर चढ़ा हुआ है उसको उतारने के लिए आए हैं। मधुबन भूमि है, तपो भूमि है, दर्पण है, मुझे अपनी आत्मा को देखना है। मधुबन का एक नाम है शेष महल, जिसमें अपना, इस दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। बैठो बाबा के आगे, अपना दर्पण में चेहरा देखो, अर्थात मुझ आत्मा को यहां से क्या क्या परिवर्तन करके जाना है। अंदर, अपने अंदर मनन लेकर क्या हो, रियलाइजेशन में लगो। यहां हम आए ही हैं रियलाइजेशन करने के लिए, अंदर की रियल आईज खोलने के लिए। तो ये रियलाइजेशन में लगना है, अपने उद्धार के निमित्त स्वयं को बनना है। ठीक है ये बात? ठीक है, कर सकते हैं ना? ये तो पक्का कर सकते हैं ना? मुझे याद है शुरू शुरू में जब हम मधुबन में आया करते थे, यज्ञ की शुरू की बातें सुनाती हूँ पुरानी। हमारे यज्ञ में एक भूरी दादी हुआ करती थी, आप में से कितनों ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम। उनकी सेवा थी स्टेशन से रिसीव करना, पार्टी को रिसीव किया करती थी। और जब वो रिसीव करती थी, पार्टी जब बस में बैठती थी, बस में ही डायरेक्शन दे देती थी। और वो डायरेक्शन क्या होता था? मधुबन पीस पैलेस है। आप सब मधुबन में पहुंचेंगे, बस चित्त पीस में हो, मन शांत हो, आपस में कोई वार्ता नहीं करेंगे। वो पीस पैलेस है, वहां कोई भी आवाज की दुनिया है ही नहीं, आवाज ही नहीं। ये डायरेक्शन नीचे ही मिल जाया करता था। और दूसरा डायरेक्शन वो दिया करती थी, मधुबन में आए हो बस बाबा से मिलने और अपने से, अपने को देखने, तीसरा कोई नहीं। बस एक बाबा को देखना, अपने को देखना, मैं और मेरा बाबा, बस। ये डायरेक्शन मिल जाया करता था। तो हम भट्टी में आए हैं, हम भी यही करने आए हैं। किसको देखना है? बाबा को। हर घड़ी बाबा बाबा बाबा। मुझे याद है हमारी बड़ी दादी, दो दिन तीन दिन पहले ही हमने दादी का दिवस मनाया ना, 25 अगस्त को। हमारी बड़ी दादी कहा करती थी कि अगर मेरे अंदर मेरा कोई पुराना संस्कार भी जागता है, मन उदास होता है, व्यर्थ आता है, ये भी ज्ञान की, योगी जीवन की इंसल्ट है। एक बार दादी ने टीचर्स की क्लास में ये बात कही थी। योगी जीवन की इंसल्ट, योगी और व्यर्थ में फंसा हुआ शोभा देता है, योगी उदास हो ही नहीं सकता। दांडी के महावाक्य, तो हम भी इस बच्ची में मन से खुश और बाबा को देखते रहेंगे, मन प्रसन्न है, हल्का है और बस एक की लगन में मगन है। बताया ना कि यहां से उठें, जाएं नीचे उतरें, सब कहें ये योगी जन आ रहे हैं। इंदौर का ग्रुप आ रहा है, नहीं ये टाइटल बदल जाना चाहिए, ये योगी जन है, ये आत्माएं भट्टी से पक पक कर आ रही हैं, चेहरे से दिखाई देना चाहिए। तो इन बातों को हम ध्यान में रख करके ये चार दिन चलेंगे। हमारा एक एक मिनट सफल हो, समय की कीमत है ना, तो हमारा एक एक मिनट सफल। मुरली सुनी, बस अंदर में वो मुरली का चिंतन चले, मनन चले, याद होगा बाबा भी कई बार महावाक्यों में कहते हैं गाय को भी अकल है, घास खाती है फिर बोलो जुगाली करती है। पहले तो ये नियम ही होता था, मुरली सुनी 15-20 मिनट मनन। अभी आपके ऊपर बच्ची के अलावा तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, हमें तो बल्कि तपस्या ही करनी है। तो मुरली सुनकर अपने अंदर चिंतन मुरली का करें, बाबा ने क्या कहा आज, मुझ आत्मा के लिए विशेष आज क्या बाबा ने कहा है, उसका अभ्यास करना है। ऐसे नहीं मुरली बहुत हल्के रूप में सुन ली, नहीं, हमारा फुल अटेंशन हो पढ़ाई, आज मुरली क्या है। तो मधुबन में आना माना अपनी झोली ज्ञान रत्नों से, माना अपनी झोली गुणों से, अपनी झोली शक्तियों से भरपूर करके जाना। आप जब जाएं तो आपको महसूस हो कि मेरी झोली इतनी भरी हुई है, अब चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, मैं आत्मा स्वस्थिति में स्थित, संग एक बाप के, हर परिस्थिति मुझसे परे है, है ही परे, उसको बोलो दूर रहो, परे रहो। ऐसा साथ का अनुभव करके जाना है या साथ बाबा को लेके जाना। तो विशेष इन चार दिनों की दिनचर्या भी आपकी कैसी रहेगी ये भी सुना देते हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेला 4 से 5 यही योग चलेगा, ठीक है, ठीक है। अमृत वेला योग आप सबको यही आना इसके लिए। फिर दूसरी बात, ये रोज की दिनचर्या प्रमाण हमारा उसके बाद कार्यक्रम कहो या कहो बाबा से बातचीत करना कहो मुरली के द्वारा। तो मुरली कितने बजे होती है बोलो, कितने बजे? 7 बजे। मुरली का क्लास का समय बाबा ने जो नियम सिखाया है, मुरली से पहले आधा घंटा योग। हम सबको 6:30 ऊपर योग के लिए पहुंचना है। पहले मैं योग करके आत्मा को तैयार करूं, तब तो मुरली अंदर में समाएगी, नहीं तो समाएगी कैसे? तो सब इस बात का ध्यान रखना। हम सब विशेष इसी कार्य के लिए आए हैं, तो हम सब 6:30 बजे, 5 से 6:30 बहुत टाइम होता है, नहीं होता है तैयार होने के लिए, सफिशिएंट नहीं है। तो 6:30 बजे सब तैयार हो करके ओम शांति भवन में पहुंचेंगे। 7 बजे हमें मुरली की क्लास, बाबा के मुरली, वो हम श्रवण करेंगे। मुरली के पश्चात आप नाश्ते पर जाएं, थोड़ा सा आपके लिए वक्त है बीच में, मनन करें, नाश्ता करें। 9:30 बजे लगभग नित्य बाबा के कमरे में कुछ भाई बहने, कुछ शांति स्तंभ, कुछ झोपड़ी, 4 धामों की यात्रा करें। 10 बजे यहाँ हॉल में नित्य आपको आना है, ठीक है ये बात? 10 विशेष क्लास कभी किसी भाई बहन की, कभी किसी की रोज हमारे लिए रहेगी। 10:30 से 10 बजे आकर हम फिर पुनः योग करेंगे। उसके बाद क्लास करेंगे, और क्लासेस जब पूरी हो जाएंगी 12:30-1 बजे के बीच में योग और क्लास चलेगा, फिर हम भोजन के लिए जाएंगे। 4 बजे तक आपके लिए रेस्ट है। उसके बाद 4 से 5 तैयार होकर के अपना पुनः 4 धामों की यात्रा करें। 5 बजे इधर आएंगे, ठीक है? किसी को कोई बात मुश्किल लगती हो तो बताएं, ठीक है ना? फिर उसमें योग भी करेंगे, थोड़ी सी क्लास होती, योग होता, विशेषतः योग रहेगा, और फिर रात्रि क्लास होगी। भोजन के पश्चात 8:30-9:30 से 9:30 से 10 बजे तक, ठीक है? लेकिन हम सबको इस दिनचर्या को अच्छी रीति पर चलना भी है, एक दूसरे का सहयोगी भी बनना है। 2-3 बातों का विशेष उसमें भी ध्यान रखेंगे। जब जब आप कमरों से आएंगे तो लाइट पंखा चालू छोड़ के आएंगे। ये अपना घर बाबा का घर है, हम सब बाबा के बच्चे, घर के बच्चे हैं। अपने घर का ध्यान हमें अपने आप रखना होता है। लाइट, पंखे, नल चालू, इन बातों का अपने आप ध्यान रखें, ठीक है।